तफसीर देखेंगे आयत नंबर 51 से। या अय्युहर रुसुल कुलु मिनत तैयिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलू न अलीम। ए मेरे पैगम्बरो, यहाँ देखिएगा रसूल आया है, रसूल नहीं, इसलिए जब आप तर्जमा याद करें या लिखें तो आपको इसका फ़र्क मालूम होना चाहिए। ए मेरे पैगम्बरो, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छे काम करो, बेशक मैं जो आमाल तुम कर रहे हो इससे खूब वाकिफ हूँ। यहाँ से सबक का आगाज़ है। एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब किया और फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह पाक है और पाकीज़ा चीज़ों ही को पसंद फरमाता है, लिहाजा इसी बात का अल्लाह ने मोमिनों को हुक्म दिया है जिस बात का हुक्म उसने अपने रसूलों को दिया है। इसके बाद आपने ये आयत तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तैयिबाति मा रज़क़नाकुम। हम सूरत बकरा में यह आयत पढ़ चुके हैं जिसका तर्जमा क्या है कि ईमान वालो, पाकीज़ा चीज़ें खाओ जो हमने तुमको अता फरमाई हैं। फिर इरशाद फरमाया कि एक आदमी दूर दराज का सफ़र तय करता है, इसके बाल परा गंदा और गुबार आलूद हैं, यानी सफ़र की जो तकलीफ़ें इंसान के ऊपर होती हैं वो सारी दिख रही हैं, और फिर वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगता है, या रब्बी कहता है, हालांकि इसने जो खाया है वो भी हराम है, जो इसने पिया है वो भी हराम है, जो इसने पहना है वो भी हराम है, और इसकी खुराक भी हराम से है। फन्ना युस्तजा बुजालिका, तो ऐसे हराम खोर की दुआ अल्लाह कैसे कबूल फरमाए। ये सही बुखारी की रिवायत है। मेरा ख्याल है कि इसे एक रिवायत से ही हमें इस आयत की रूह समझ में आ गई कि अल्लाह ताला ने यहाँ रसूलों को तय्यिबात खाने का हुक्म दिया है। हमने सूरत बकरा में ये मौजू जब देखा था तो दो चीज़ें साथ साथ देखी थी, एक थी तय्यब और एक थी हलाल। दोनों में 19-20 का फ़र्क भी होता है और एक लेवल पे आके दोनों एक ही जगह हो जाती हैं। तय्यब जो होता है वो जिस्मानी सेहत के लिए अच्छा होता है, गली सड़ी ना हो, ख़राब ना हो। इसी तरह हलाल जो है इसके अंदर ख़ास तौर पे दो तरीके से हमने बात की थी। एक तो ये कि उसके इंग्रेडिएंट्स ख़राब हो, मसलन कोई सुअर का गोश्त खा ले, शराब पीने लगे, खाने में ऐसी कोई चीज़ हो जो मना है इस्लाम में, और दूसरा इसका ये था कि सोर्स ऑफ इनकम ख़राब हो। यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनल हलाल, क्या रसूलो हलाल खाया करो। क्यों? इसलिए कि रसूलों से तो ये बात मुतवक्के ही नहीं थी कि वो या तो रिस्के हलाल उनका ना हो, यानी सोर्स ऑफ इनकम उनका ख़राब हो। कभी आप सोच सकते हैं किसी रसूल का तसव्वुर करके कि उसका बार था, कोई रसूल कसीनो चलाते थे नऊज़ु बिल्ला, किसी रसूल के कन्वीनियंट स्टोर पे शराब बिकती थी, कोई रसूल इतना मजबूर हुआ रोज़ी रोटी के हाथों कि उसने कहा कि फिर क्या हो सकता है, लाओ फिर हम भी थोड़ा सा हराम माल रख लेते हैं अपने स्टोर में ताकि अच्छी बचत हो। ये चीज़ें तो आपकी अक़ल और आपकी फितरत आपको बता रही होगी कि सुनने में कितनी मायूब लग रही हैं। तो बात सुन लीजिए कि वही बात जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह कर कही गई, वही यहाँ या अय्युहर रुसुल कह कर की गई। नबियों से तो ऐसी किसी चीज़ की तवक्को नहीं थी, लेकिन उम्मतियों को बताया गया कि देखो जिस चीज़ का रसूलों को हुक्म नहीं है, फिर बताओ कि तुम वो काम करोगे तो तुम कैसे बचोगे। क्या तुम उसी जन्नत में जाना चाहते हो जिस जन्नत की दावत तुम्हें रसूलों ने दी? फिर दूसरी बात देखिए कि यहाँ रसूलों को हलाल लफ्ज़ की बजाय तय्यब कहकर असल में तवज्जो दिलाई गई कि तय्यब चीज़ से मुराद ये है कि तुम मुख्तलिफ तरीक़े से पाकीज़गी का अहतमाम करो, मसलन तरीक़ाकार तुम्हारा ठीक हो। आप देखिए कि तय्यब के लफ्ज़ में ज़्यादा तरीक़ा आता है खाने के मैनर्स में, खाना कैसा हो, पाक हो, साफ़ सुथरा हो और उसके अंदर कोई गंदी चीज़ ना हो। फिर दूसरी बात यह है कि तय्यब के अंदर खाना खाने के तरीके भी हैं। मसलन आज के दौर में अगर हम देखें तो तय्यब क्या होगी? नंबर एक, नबी सल्लम की सुन्नत के मुताबिक कोशिश करें कि बैठ कर खाएँ, मजबूरी में खड़े होकर खाना पड़े तो गुनाह नहीं है। दूसरी बात, हाथ धो के खाए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाए, एक तिहाई पेट खाली रखे हवा के लिए, हजम होने के लिए। फ्रेश फूड खाए इंसान, सब्जियां, दूध, प्योर फूड खाए, फिर गर्म खाने में फूके ना मारी जाएं, फिर सिर्फ जुबान के चस्के के लिए ना खाते रहें। और इसी तरह के दूसरे मैनर्स जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईटिंग हैबिट से मिलते हैं, और उस पर एक अलग पूरा लेक्चर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से खाते पीते थे। यहाँ ये बात करके अहमियत का एहसास दिलाया गया, और वो क्या कि कुलू मिनत तय्यिबाती वामलू सालेहन। ये है इस आयत का खूबसूरत नुक्ता कि खाने पीने का असर जो है वो इंसान के आमाल पर होता है। पहले लेने की बात थी खाओ कुलू, अब देने की बात है कि वामलू। इधर से ये भी पता चलता है कि जिस रब की नेमतें लेते खाते पीते हैं ना, तो कुछ तो थैंक यू बोला जाए, कुछ तो शुक्रिया बोला जाए। वीकेंड के एक क्लास में एक स्टूडेंट थी, तो उन्होंने सवाल किया कि किसी मौके पे, शायद वो कहीं डॉक्टर के पास थी, सर्दियों के दिन थे और जोहर का वक्त निकलने वाला था, तो इन्होंने उन्हें कहा कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, नमाज में थोड़ा वक्त रह गया। खैर कहती कि मेरी घबराहट देख के उन्होंने कहा कि इतनी सख्ती है तुम पर दीन में। पूछने लग गई कि कितनी दफ़ा नमाज़ पढ़ते हो, तो इन्होंने बताया कि आजकल दिन छोटे हैं तो हमारी दो तीन नमाज़ें इकट्ठी आती हैं, जैसे 2 घंटे के अंदर 3 नमाज़ें हैं। तो कहने लगी कि उसने मेरे ऊपर बड़ी तरस खाई हुई नज़र से कहा कि इतनी सख्ती है तुम पर। कहती उसकी इस बात से मैं पजल हो गई, मैं उसको जवाब नहीं दे सकी, तो मैं क्या कहूँ। तो मैंने उसको कहा कि आप शर्मिंदा क्यों हुई, आप ये क्यों कहती हैं कि भाई इतनी सख्ती है। आप कह नहीं कि मेरा दिल लबरेज है अल्लाह को शुक्रिया कहने के जज्बात से, मैंने अल्लाह को थैंक यू बोलना है। कोई दे दे चीज़ और आप उस वक्त तो थैंक यू ना बोलें और 2 घंटे बाद बोलें, वो कहेगा अच्छा जी ख्याल आ गया आपको थैंक यू बोलने का। तो लिहाजा बार बार जो इबादत की दावत दी जाती है नमाज़ों की सूरत में और अच्छे कामों की सूरत में, ये असल में शुक्रिया है, और इसके हलाल का बंदे के अमाल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता, शायद आपने गौर किया कि नहीं, या यूह रसूल कहा गया, खिताब का सीगा, तो क्या वो रसूल नबी सल्लम के दौर में मौजूद थे? अगर या यूह रसूल होता तो हम कहते ये नबी सल्लम को कहा गया, तो क्या आप इससे ये मान लें कि सारे रसूल हाजिर और नाजिर हैं, मौजूद हैं, अभी भी सुन रहे हैं कहीं बैठे हुए? ये क्यों कहा क्या रसूलों? इसके मुख्तलिफ जवाब दिए गए। पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बाकी रसूलों को मुखातिब करके ये पैगाम दिया गया कि हर नबी को एक ही हुक्म था। जैसे आप देखिए कि इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप समझें कि आप घर में जाएं और आपका कोई एक बच्चा गलत काम कर रहा है, तो आप उसको एक बच्चे को कहने की बजाय कि बच्चों कान खोल के सुन लो, मतलब क्या है कि जिसने किया वो तो सुन ही रहा है, बाकी भी कान खोल के सुन लें। तो इसके इस इन छोटी छोटी बातों पे गौर करते हुए अपने अकीदे को नहीं बदलना चाहिए, और जहाँ भी लोगों ने कुरान की तफसीर में कुछ चीज़ों को इधर उधर किया उसमें ये हद से बड़ी भी सोच थी। और आज हमसे ज़्यादा गैर मुस्लिम कुरान और हदीस के ऐसे नुक्तों पे बड़ा गौर करते और करवाते दिखते हैं कि देखो फिर ये कैसा दीन है। अब देखिए कि हर बंदा अपनी ईटिंग हैबिट्स को देखे ना, तो उसका अमल दूसरों को पता चल सकता है। किसी का कॉल है कि तुम मुझे बताओ कि लोग क्या खाते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या करते हैं। हम जो खाना खाते हैं ना, बराहे रास्त हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी बन के फैल जाता है। अब वो एनर्जी इस्तेमाल होती है तो हम दुनिया के काम भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो खाने हम खाते हैं ना, उससे क्या बनेगा ये हमारे आमाल पे बहुत गहरा असर रखता है। मिसाल देती हूँ कि आप सुबह उठ के फ्रेश फूड खाते हैं, दूध पी लिया, सीरियल खा लिया, आप अपने जिस्म में एक एनर्जी महसूस करते हैं, आप उठ के फ़ौरन थके हुए होते हैं तो फ्रेश होके काम करते हैं कि शुक्र है नींद भी पूरी हुई, खाना भी खा लिया। और अगर आप सुबह उठते ही खूब 2 पराठे खा लें भारी किस्म के, तो वो जाता है तबीयत पे? बिल्कुल आता है। जो लोग बहुत मीट खाते हैं, मसलन जैसे बीफ खाते हैं, या हमारे कल्चर में तो आम नहीं लेकिन ऊँट का गोश्त खाते हैं, उनके मिजाज में गुस्सा, सख्ती, जिनसी जज्बात का गलबा होता कि नहीं होता? इसके बरक्स आप देखिए जो वाइट मीट खाते हैं ज़्यादा, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि नॉन मुस्लिम्स अगर पिक का गोश्त ना खाएं, सिर्फ वाइट मीट खाएं, बकौल इनके जैसे फिश और वाइट चिकन खाते हैं, इनके अंदर जिनसी मसाइल जो हैं वो आधे से कम रह जाएं। पिक के अंदर एक में इतना कुछ होता है जो बीफ और दूसरे सारे गोश्त का तकाबुल नहीं कर सकता। हम जो खाते हैं उसका असर होता है, हाइपर हो जाता है इंसान। आप देखें कि आप कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे कल्चर में तो वैसे ही बड़ा मारूफ है खाने को डिस्कस करना। कोई पेट में भी दर्द का बात करे तो कहते हैं अच्छा ये खा लिया होगा, इसमें बादी होती है, इसमें हवा होती है, अच्छा ऊपर से अदरक पी लो, अच्छा ये कर लो वो कर लो। तो हम तो खूब मानते हैं कि खाने पीने का असर होता है बंदे की तबीयत पे। इन जो लोग मिर्चें नहीं खाते उनका रंग देखें सुर्ख सफ़ेद होता है। हम जैसे कई लोग कहते हैं फलां तो मसाले खा खा के उनका रंग भी जल गया ना। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जिस तरह फिजिकल असर होता है ना खानों का, इसी तरह याद रखिए कि हमारे पेट में जो लुकमे जाते हैं ना, और हमारे के अंदर ब्रैकेट में लिख लें हम और हमारे बच्चे, हम और हमारी नस्लें, जो अंदर जा रहा है वही बाहर आएगा। जैसा रिस्क हम बच्चों को खिला रहे हैं ना वैसे ही अमल आएंगे। जैसे ही कमाई घर में आती है ना, ना चाहते हुए भी उसका कुछ ना कुछ असर इंसान के ऊपर आता है। हमारी कमाइयों के अंदर जब तक पूरी तरीके से पाकी नहीं आ जाती ना, हमारे आमाल पाक नहीं रहते, हमारी नीयतें पाक नहीं रहती, हमारे कई काम, आप देखें हम खुद नेकी के कई काम करना चाहते हैं। कभी भी अगर किसी को आप में से ये मसला हो कि कब से नीयत की हुई है ये काम करना है, पता नहीं तौफीक ही नहीं मिल रही, जब सोचती हूँ रुकावट, जब सोचूं रुकावट, शुरू भी किया कई बार छोड़ दिया, फौरन जाके चेक करें, इन्वेस्टिगेशन करें। फ़र्ज़ बनता है हम सबका, अपने मर्दों की, अपने बेटों की, अपने भाइयों की कमाइयों में, कि कहीं कोई दीदा और दानिस्ता किस्म की चीज़ ऐसी तो नहीं आ जाती जिसको हमने कभी फील ही नहीं किया। एक प्रैक्टिकल मैंने चीज़ देखी तो मुझे वाकई हैरत हुई कि शैतान किस खामोशी से हमारे आमाल में आ जाता है। कभी भी इस तरह से मुझे नहीं फील हुआ, लेकिन मैंने करीब से देखा कि बस दफ़ा ऐसा होता है कि आप नहीं भी चाहते ना किसी चीज़ में, तो ज़रूर कहीं ना कहीं गलत चीज़ आपकी कमाई में डाल दी जाती है। मतलब हम लोगों ने यहाँ एक अकाउंट बनवाया आपके स्कूल के लिए, और हमने उनको कहा कि ये इंटरेस्ट फ्री होगा, पूरी बात हो गई, लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया जब मैंने देखा तो उन्होंने उसमें, चाहे आपके कुछ भी नहीं है लेकिन उन्होंने डाला हुआ था। अब अगर हमारी नज़र इस पर ना हो तो मैं सोच में रह गई कि जिनके भी अकाउंट्स हैं और सब कहते हैं कि नहीं है कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तो वो चाहे नमक बराबर भी आटे में चीज़ चली गई तो गया ना, जाता है ना, तो जब कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा ना। तो सिर्फ ये मिसाल देने की मकसद क्या था कि जिस चीज़ में आप दीन या दुनिया का कोई काम करें, बरकत खैर दिलों से मोहब्बत सब निकल जाती है जहाँ बीच में कोई ना कोई बात आ जाती है। तो आज अगर हम समझते हैं इस बात को कि बीवियाँ शौहरों की नहीं मानती, तो शौहर चेक करें कि क्यों नहीं मान रही, आखिर है तो मेरी बीवी, क्यों मेरे से इतनी आगे बढ़ी हुई, इतनी सरकश क्यों है, यकीनन कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुलू मिनत तय्यिबात वामलु सालेहन, जो खाते हो उसका हक अदा करो, अच्छे तरीके से काम करो, अच्छी चीज़ों को लाओ। और नबियों का तो काम ही क्या होता है, अमल सवाले, उनकी तो सारी ज़िंदगी होती चलते फिरते अल्लाह के दीन की नुमाइंदगी करने की है। तो लिहाजा अगर कभी किसी वक्त आप महसूस करें ना कि खाना खाने में बहुत खा लिया, या छोटी सी ये भी बात कर दूं, वाकई बस दफ़ा हमारी पसंद का खाना होता है, मानता है इंसान, बहुत भूख लगी होती है, आप ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या करें, फिर अगले वक्त कम खाएं, एक वक्त का गैप दे दें, पहले से एक निसाब मुकर्रर कर ले। बास लोगों का मारूफ है ना कि वो एक रोटी खाते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, बास को तो मैंने देखे इतने पिक्की होते हैं कि एक ख़ास वज़न का आटा होता है और उतनी रोटी खानी है और उससे एक नवाला ऊपर नहीं खाना, ये उससे अच्छी आदत होती है, क्योंकि जैसे बर्तन को थैले को बढ़ाएं तो वो खुलता जाता है ना, तो खाना भी इस तरह खुलता है। हमारे वालिद कहा करते थे कि भूख और नींद जितनी चाहो बढ़ा लो, और बिल्कुल सच है। आप कम करना चाह रहे हैं ना, अब ये नहीं कि कल से आप जाके तो बिल्कुल ही आधी रोटी पे आ जाए, वो भी एक अननेचुरल चीज़ है। एक खास सेटअप रखें कि बस इससे ज़्यादा मेरे अंदर नहीं आ सकता, और फिर दूसरी बात वही है कि आप उसके अंदर थोड़ा नेचुरलपन लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जला के भुना के और इस तरह की चीज़ों को खाने की बजाय बिल्कुल प्योर फूड नेचुरल फूड पे आएं। इंशाल्लाह सब्जियां, दाल, गोश्त भी अच्छी चीज़ है, सारा कुछ ही अल्लाह ने बनाया, लेकिन इसके अंदर एक बहरहाल तवाज़ुन होना चाहिए। का इन्नी बिमा तामलून आलीम, इस जुमले को पढ़ते हुए मेरे जहन में जो इमेजिनेशन में आ रहा है ना, जैसे किसी ने अपने घर में कुछ मुलाज़म रखे हुए हैं और मुलाज़म भी खाना खाते इधर से ही हैं, अब खाएं तो वो खूब चौड़े होके और काम के वक्त जाके अंदर सो जाएं, तो कंपनी वालों ने या जो भी ओनर है कोई कैमरा फिट किया हुआ है कि ये देखो खा पी के इतने और अंदर जाके सो गए, सुस्ती के मारे हुए बुला रहे हैं और आ नहीं रहे। इस तरह हम जब खाना खा के बैठते हैं ना, उसके बाद अल्लाह की निगाहों को अपने ऊपर महसूस किया करें। अगर आप एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहें कि इन्नी बिमा तामलून अलीम, इस जुमले को खूबसूरत तरीके से लिख कर वहाँ लगाएं जहाँ अमूमन खाना खाने के बाद आप बैठते हैं, मैंने तो देखे अक्सर कहते हैं अब चाय इधर ही ले आओ, अब ज़रा मनपसंद चीज़ें देखते हैं, अब इधर ही बैठते हैं, लाओ ड्राई फ्रूट इधर ही ले आओ। नहीं, जो देता है फिर वो हिसाब भी रखता है कि कहाँ इसको लगा रहे हो। नबियों को खिताब किया, अब खाने पीने की बातें सारी की, और अब आगे उसी खिताब को बढ़ाया गया, व इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन, और यही तुम्हारा दीन है और एक ही है, व अना रब्बुकुम फत्तकूनी, और मैं तुम सबका परवरदिगार हूँ, सो तुम मुझसे डरा करो। पीछे नबियों से खिताब था, मुश्तरक बात थी, यहाँ उम्मतुकुम और रब्बुकुम, इन दोनों में भी नबियों ही की बात है। अल्लाह ताला अंबिया कराम को बता रहे हैं कि जिस तरह आप सबको एहकामात एक दिए जा रहे हैं, इसी तरह आप सबको दीन भी एक ही दिया गया था। सारे रसूलों का एक ही दीन था, एक ही पैगाम था, और वो क्या था कि वो सब एक रब की दावत दें लोगों को, अना रब्बुकुम रब, और फत्तकूनी। पीछे हमने देखा पिछले सबक में कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके बाकी अम्बिया कराम तक हर नबी की दावत के यही दो नुकात थे, अल्लाह की इबादत और तकवा इख्तियार करो। इससे क्या पता चला कि हर दौर में नबियों के ज़रिए से जो दीन दिया गया वो एक ही था, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं था, कभी दो दीन नहीं आए। लेकिन हुआ क्या, उम्मत एक थी, नबी एक थे, उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं था। बाद में क्या हुआ, फ़तक़त्तअमरहुम बैनहुम ज़ुबुरा, लेकिन काट दिया उन्होंने अपनी दीनी वहदत को पारा पारा करके इख्तलाफात की वजह से, और उसके बाद कुल्लु हिस्बिम बिमा लदैहिम फरीखून, और हर गिरोह अपने नज़रियात पर मसरूर है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि पीछे चूंकि रसूलों की बात हो रही थी तो यहाँ फिर रसूलों की बात ही आ गई, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात महजूफ है। महजूफ का मतलब क्या है कि मफहूम तो मिल रहा है लेकिन अल्फाज से नहीं मिल रही। ये वही अंदाज़ है जो हमने सूरत बकरा में भी किया था कि अल्लाह ताला ने सबको एक ही दीन पे रखा, फिर उसके बाद अम्बिया कराम को मुकर्रर किया, तो उसमें फ़ख्त तलफ़ू का लफ्ज़ आपको ऐड करवाया गया था। इसी तरह यहाँ मफहूम क्या बनता है कि रसूलों की तालीम तो एक थी, सब ने एक अल्लाह की तरफ बुलाया, सब ने तकवा की दावत दी, अल्लाह का डर सिखाया, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कौमों ने नबियों के मुत्तबईन इत्तबा करने वाले जो थे उन्होंने दीन को टुकड़ों में बांट दिया। ये ऐसे ही होता है कि जैसे एक तहरीक शुरू होती है ना, तो शुरू में बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस पे काम होता है, हर बंदा एक ही मनहज को फॉलो करता है, एक ही रूल एंड रेगुलेशन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप ढीली पड़ती है और मनमानियाँ जब होती हैं तो हर बंदा अपने तरीके से काम करने लगता है और फिर नतायज भी गलत होते हैं, और जब नतायज ठीक नहीं होते तो फिर इल्ज़ाम दिया जाता है दूसरों को कि हम तो पूरी कोशिश करते हैं और नतायज मुख्तलिफ हैं। याद रखें कि आप एक तरीके से एक रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो कभी भी उस खाने में 19-20 का फ़र्क नहीं आएगा, नाप के डालें चीज़ें और वक्त को भी सामने रख लें। लेकिन जब हमारे ही रेसिपीज़ हमारे तरीक़ेकार में फ़र्क आता है तो नतायज यकीनन फ़र्क आएंगे। हम जो नतायज चाहते हैं ना वैसा काम करें। अल्लाह के नबी सारे अपने दौर में सारे के सारे बिल्कुल उसी प्लान को फॉलो कर रहे थे जो उनको अल्लाह की तरफ से दिया गया, लेकिन उनके बाद वक्त के साथ साथ जैसे शम्मा से दूरी के ऊपर अंधेरा बढ़ता जाता है, इसी तरह इन नबियों के जाने के बाद लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर लिया अपने दीन को। यहाँ से आपको अब फ़िरकाबंदी और इख्तलाफ की हकीकत भी समझ में आती है। फ़तक़त्तऊ लफ्ज़ तकत्ता को देखेंगे ना अगर, तो ग्रामर की रोशनी में इसका लफ्ज़ ही माना क्या, छोटे छोटे टुकड़े करना, कत्ता यो कत्ती यो तख्ती, बाप तफ़ील से, और उसकी एक सिफत होती है कि बहुत छोटा चूरा 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 कर देना। आप एक बच्चे को कागज़ का टुकड़ा दें, बाद में जाके देखेंगे तो उसके 100 टुकड़े पड़े होंगे छोटे छोटे। एक ये कि आपको कागज़ नहीं चाहिए, आप उसको फाड़ते हैं 3-4 टुकड़ों में करके बिन में फेंक देते हैं, तो कता कता क्या होता है, आम तोड़ना। लेकिन यहाँ तकत्ता क्या पता चला कि फॉलोअर्स ने, उम्मतियों ने, बाद में आने वालों ने छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर दीन के कई 100 टुकड़े कर दिए। ज़ुबुरा, ज़ुबुरा का लफ्ज़ ज़बूर की जमा है, लोहे की जंजीर को कहते हैं डिक्शनरी में, और मोटे लफ्ज़ों में लिखी हुई किताब। यहाँ इससे मुराद वो ज़बूर नहीं है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी। बताया क्या गया कि असल दीन का जो हदफ होता है ना वो तौहीद और तकवा है, और जब तक किसी भी दीन के अंदर रूहानियत कायम रहती है ना, जब तक लोग अल्लाह से डरते और अपनी मौत को याद करते हैं ना, इया का नाबुदू व इया का नस्तईन पे होते हैं ना, तो कौमें जुड़ी रहती हैं। हर एक की मोहब्बत का मरकज़ अल्लाह और अल्लाह का रसूल होता है। लेकिन जब छोटी छोटी बातें आम हो जाएं, उस पे तो इतनी लंबी बातें होने लगें कि वही चीज़ बड़ी लगे, तो फिर याद रखिए दीन में इख्तलाफ आते हैं। आज के दौर में भी अगर हम देखें तो उम्मत मुस्लिमा के कई टुकड़े हमें दिखते हैं ना किए हुए। पहले लोग दीन के छोटे छोटे मामलात पे बहस करते हैं, फिर उनको इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनको कुल दीन बनाते हैं। जब कभी कोई मसलक या इख्तलाफ के मामले में आपसे बात करे, तो उस वक्त आपको जवाब आना चाहिए कि आज उम्मत मुस्लिमा में भी जितने आपको मसालिक मिलते हैं, जितना आपको फ़िक़्ही इख्तलाफ दिखता है, वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं थीं जितनी बड़ी बन गई। दूर की किताब को आपने करीब से देखना शुरू कर दिया। कोई हराम नहीं है, कोई गलती पे नहीं है, होंगी इज्तिहादी गलतियां, अल्लाह मुआफ़ कर देगा। चारों में से एक में एक ही की राय उसमें ठीक होगी, लेकिन बाकी तीन को अल्लाह रुसवा नहीं करेगा इंशाल्लाह, अगर उनके पास उसकी भी कोई दलील मौजूद है। अपने दौर में आइमे कराम ने कुछ नहीं कहा था, ये आज हमने वो दूर के मसलों को करीब कर लिया। छोटी छोटी बातों पे झगड़े बन गए। अच्छा, बुराक हलाल है कि हराम? खाया कभी आपने? पता है आपको ये होता है कि नहीं होता भाई? ना किसी ने देखा ना कुछ। आपको पता है कि तारीख में जब हलाकू हां ने मुसलमानों की ईंट से ईंट बजाई थी, तो उस दौर के उलमाए कराम के अंदर जो बहसें चल रही थी ना, वो ये थी कि क्या वो बुराक जिस पे अल्लाह के नबी ने सफरे मेराज किया था, वो हलाल है कि हराम? है कभी आना है दुनिया में वापस? खाएंगे आप और मैं? क्या बाकी सारे जानवर ख़त्म हो गए? और जब उम्मत मुस्लिमा तफरकों में बढ़ती है, दुश्मनों की तो हंसी छुटती है और खुशी खुशी फौजें बढ़ाते हैं। ये मौजू हमने बड़ी तफसील से इत्तेहाद मिल्लत किताब में किया है। यकीन करें, 5-6 लेक्चर हैं, आप सुन लें, आंखें खुल जाती हैं। जो हमने इस वक्त अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में डाला हुआ है, इसकी वजह से लगता है कि हर बंदा दूसरे इसका दुश्मन है। हम समझते हैं कि जब ये छोटे छोटे मसलक बन गए, तो ये समझे कि अब इत्तेहाद के ख़िलाफ़ है। मिसाल है कि अगर आप अपने आप को एक स्कूल ऑफ थॉट से जोड़ लेते हैं, तो अब यकीनन फिर दूसरे उससे फ़र्क हैं या आप दूसरे गलती पे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम सब इस वक्त एक ही काम कर रहे हैं। अगर बिलफर्ज हम कोई प्लानिंग कर रहे हो और आपसे कहा जाए कि अच्छा, क्या ख्याल है कल ब्रेक में आप क्या खाना पसंद करेंगे, हम वो मंगवा लेते हैं। आप में से कोई कह सकता है समोसे मंगवा लें, दूसरा कह सकता है नहीं मेरा ख्याल है कि आप पकौड़े मंगा लें, तीसरा कहेगा कि आप ऐसा करें कि सिर्फ फ्रूट ही मंगा लें। अब क्या आप सब ने मुख्तलिफ राय दी? बिल्कुल दी। लेकिन क्या इस इख्तलाफ राय के बावजूद आप सब मुत्तहिद हैं कि नहीं इस क्लास में? आप में से किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि अगर कल जलेबियाँ ना आईं तो फिर हमने क्लास नहीं लेनी, हम नहीं ये कोर्स कर रहे क्योंकि आपने पकौड़े नहीं इधर मंगाए? तो ये है फ़र्क। राय का इख्तलाफ होते हुए भी इत्तेहाद हो सकता है। बीसियों बार एक शौहर बीवी में मेरा ख्याल है एक दिन में 5-6 मौके तो ज़रूर ही आ जाते होंगे जिसमें इख्तलाफ राय होता होगा। तो क्या घर टूट जाते हैं? ले लेते हैं अब तलाक इस बात पे कि मैंने तो ये कहा था और आप ये कर के आ गए। माँ बच्चों में होती है इख्तलाफ राय। जनरेशन गैप किसको कहते हैं? इख्तलाफ राय। यहाँ बैठे हैं, कुछ से पूछे सर्दी लग रही है? नहीं। कुछ कहेंगे बहुत लग रही है। इख्तलाफ राय ख़त्म हो गया सब मामला। हमारा आज मसला क्या है कि हम इख्तलाफ राय के साथ मुत्तहिद रहना नहीं सीखते। ये जुमला लिख लें। और ये अना की, इगोइस्टिक होने की बहुत बड़ी पहचान है कि जहाँ किसी की राय से इख्तलाफ किया, वो उठ के खड़ा हो गया, बस दैट्स इट, ख़त्म, और बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं रह सकती इस घर में, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो कोई मानता ही नहीं। हालांकि राय के इख्तलाफ के साथ साथ बंदा मुत्तहिद रह सकता है। ये तारीख छोड़ें, तारीख को 5 से 6 फुट का जिस्म ये सिखा रहा है। आंखों और कानों में इख्तलाफ है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, इख्तलाफ राय है। जुबान बोलती है, दिमाग सोचता है, हमारा पूरा जिस्म मुख्तलिफ चीज़ों का मजमू है, तभी तो हमारा काम हो रहा है। आपके सारा जिस्म देखना शुरू कर दे, सारा जिस्म सुनना शुरू कर दे, काम नहीं चलेगा ना। तो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना है और इत्तेहाद को कायम रखना है। जब तक उम्मत मुस्लिमा ये चीज़ नहीं सीखेगी, वो पनप नहीं सकती। मुखालफत तू वहां भी हो जाती है, यानी इत्तेहाद तो पारा पारा वहां भी हो जाता है जहां सबकी राय एक ही होती है, लेकिन मुफादात बदल जाते हैं। सारी बात का खुलासा क्या है कि इस वक्त उम्मत को जिन मसलों में उलझा के बांटा जा रहा है, वो कोई इतने बड़े मसले नहीं थे कि आप कुरान ही से कट जाएं, आप दीन से ही कट जाएं, और आप सिर्फ एक छोटे से मसले को, एक छोटे से इश्यू को पूरा दीन बना के दीन छोड़ दें। यकीन करें, जितने आज क्लासेस में आने वाले लोग हैं ना, इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे रुके हुए हैं, और जो आते हैं वो भी रोक लिए जाते हैं बाज़ दफ़ा ये चीज़ें कह सुनकर कि हम लोगों ने ऐसी चीज़ों को नहीं सुनना कि जिससे हम अपने बाप दादा के तौर तरीकों से हट जाएं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो लोगों को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देती हैं। और सारी बात के बाद जो सबसे दुख की बात है वो क्या है कि कुल्लु हिस्बिन बिमा लदैहिम फरेहून। मान लीजिए कि हमने टुकड़े किए, फिर अफसोस भी रखिए इसका, लेकिन हर फिरका, हर गिरोह, हर ग्रुप जो है वो जो काम करता है ना, बस उसी पे खुश है। कहते हैं असल यही दीन है, पहले दीन के हिस्से किए, फिर हर टुकड़ा जो इनके पास था उस पर खुश हुए, और हर टुकड़े को ही पूरा दीन समझ लिया। देखिए, जब तक दीन की रूह बाकी रहती है ना, लोग पूरे दीन के ताबे रहते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैंने इससे पहले दी थी, फिर दे देती हूँ कि हम इंसान है ना, मैं जिंदा हूँ इस वक्त, मेरा पूरा जिस्म आपस में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर रूह है। जो ही रूह निकलती है, आप बाजू काट लें, टांग काट लें, आंख निकाल लें, बजाहर कुछ भी नहीं होता, ग्रिप खुल जाती है ना। कोई चीज़ आप इमेजिनेशन में लाएं कि जो बिल्कुल फ्रेश थी तो आपने उसको रखा हुआ था। जैसे चले मिसाल तो ऐसी अच्छी नहीं देने में, करेले के ऊपर आप धागा बांधते हैं, करेला फ्रेश था, पका हुआ था, जो ही आप उसको पकाते हैं वो अंदर से सुकड़ के छोटा होता है ना, तो धागा बाहर निकल आता है, क्योंकि उसकी रूह निकल गई, वो मर गया करेला। हम जिस्म को जब सेहतमंद रखते हैं ना, तो हमारा सारा जिस्म जुड़ा रहता है, मरते ही जब रूह की डोरी निकलती है ना, तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी तरह जब दीन की रूह निकल जाती है, तो लोग ज़ाती ख्वाहिशात, नफसानी जज्बात, अना और ऐसी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं कि वही हिस्सा उनको अच्छा लगता है जिस पे उनका हाथ होता है, और बिल आखिर होता क्या है, अफतुमेनू नबी बा दिल किताबी व तक फुरू नबी बात। क्या बस तुम किताब के कुछ हिस्से पर तो ईमान लाते हो और तुम कुफर करते हो बाज़ का, चलो ठीक है, फमा जजाओ, फिर बताओ इसके सिवा और क्या जजा होगी उस कौम की, सिवाय इसके कि वो दुनिया और आखिरत में रुसवा हो जाएं। अल्लाह तो मैं शुरू से बताती है, बता रहे हैं कि वो कौम और मिल्लत जो अल्लाह की किताब के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करे, जिस मसले की जद अपने दीन पे पड़ी उसको छोड़ दो, और जिसकी जद दूसरों पे पड़ी उसको हाईलाइट कर दो। आसानियों का दीन ले लो, मुश्किल का छोड़ दो। वही मिसाल जो सूरत हज में हमने की थी कि वमिनन नासी में याबुदुल्लाह अला हरफिन, लोगों में कोई ऐसा जो किनारों पर रह के अल्लाह की इबादत करता है, फ़ैन असाबतहु खैरन इत्मअन्न बिही, खैर पहुंची बहुत मुतमईन, और अगर वैन असाबतहु फितनतुन, और अगर फितना पहुंचा तो जहां से आया था वहीं चला गया। अल्लाह ने हमारे दीन में हर मसले का हल दिया, जिंदगी की हर वो चीज़ जो बुनियादी तौर पर हमारे लिए काफ़ी थी वो दे दी। लेकिन हम जब पूरे दीन को या तो सियासत कह दें, हर मसले में सियासत, बाज़ हर मसले से जिहाद, बाज़ हर मसले से तबलीग, तो याद रखें वो टुकड़ा तो आपकी शोहरत बन जाता है लेकिन पूरा दीन बाकी नहीं रहता। बज़ाहर दीन का खूब चर्चा होता है लेकिन अमली तौर पर इतनी कमियाँ होती हैं कि दीन फैलता हुआ ही नहीं दिखता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खैरुल खुरून करनी, लोगों बेहतरीन दौर मेरा दौर है, तुम मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उनका जो उनसे मिलेंगे। आप देखिए कि फ़िरके से इतनी मोहब्बत बढ़े कि दूसरे को उस दीन से खारिज ही कर दें, आप इसको कौन सा दीन कहेंगे? अब इसको अल्लाह ताला आगे कुछ और लफ्ज़ों में बता रहे हैं जिसको पढ़ते हुए वाकई बंदे को बेहोशी तारी होने लगती है। फरमाया फ़ज़रहुम फ़ी गमरतिहिम, पस ए नबी रहने दो इनको इनकी बेहोशियों में, डूबे रहें इन अपनी बहसों में, अपनी इन्हीं बातों के ऊपर लड़ते भिड़ते रहें। गमरा का लफ्ज़ जहाँ आया, गैन मीमरा गमरा, इतना गहरा पानी कि जिसकी तह नज़र ना आए उसको गमरा कहते हैं। यहाँ गमरा से मुराद जहालत है, इनकी ला यानी बहसें, ना ख़त्म होने वाले इनके इज्तिहादात, ना ख़त्म होने वाली इनकी बातें, वो बातें, वो मीटिंग्स जिनका कोई एंड निकलना ही नहीं, मनाजरे, मुबाहले, एहतजाज, ये कर लो, उसने ये गलत कर दिया, उसने ये गलत कर दिया, ऐसी चीजों ने इनको बिल्कुल ढांप के रख लिया, खत्म कर दी इनके अंदर से सोचने समझने की बात। इनकी गलत फहमी है ये कि सारा दिन वही मसला है जिसको हमने मसला बना लिया, का कब तक इनको छोड़ दो, हत्ता हीन, कुछ अर्स तक तो छोड़ दो, जरा इनको होश आ ले। इनकी नजरें बड़ी छोटी हैं, तंग दिल हैं ये घुटे हुए सीनों वाले, ये कोताह अंदेश लोग हैं, ये खुद गर्ज लोग हैं, कुछ देर इनको पड़े रहने दो इनकी गफलतों में। आपने समझाने का हक अदा कर दिया, इनके इनाद और इनके तासुब में जरा फर्क नहीं आया। जब चारों तरफ से अजाब इनको घेरेगा, फिर इनकी आंखें खुलेंगी, फिर इनको पता चलेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। लफ्ज़ गमरा को थोड़ा सा और खोलती हूँ तो आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत लफ्ज़ अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ इस्तेमाल किया। अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं, गमरा ऐसी चीज को कहते हैं जो तुझे ढांप ले और तेरे सर से भी बुलंद हो जाए। यानी आप इमेजिन करें अपने आप को, आप खड़ी हैं और आपके सामने कोई ऐसी आपके ऊपर चादर डाली गई और वो आपके सर से भी ऊपर हो। इसीलिए हसद को गिमरुन कहते हैं, क्योंकि वो दिल को ढांप लेता है, हासिद को भी कुछ सुझाई नहीं देता ना, अंधा बहरा हो जाता है बंदा हसद में। कसीर पानी को भी गमरुन कहते हैं, क्योंकि वो सतह जमीन पर फैलकर इसको छुपा देता है। तो यहाँ इस लफ्ज़ से मुराद हैरत, नंबर दो गफलत, और नंबर तीन जलालत है जिसमें वो लोग मुब्तला थे। फजर होम, छोड़ दो इनको, मत पैसे करो, मत मनाजरे करो, बस इनको छोड़ दो इनकी इन बातों में। ये इसी खुशफहमियों में पड़े रहेंगे, लगेगा पता अबू जहल, उत्बा, शैबा, ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये अपनी गुमराहियों की तारीकियों में गर्क है, इनको दिखता ही कुछ नहीं। जो अंधेरे में होता है ना, उसको रोशनी में जाके भी रोशनी नहीं दिखती। तो लिहाजा ऐसे लोगों के साथ आप अपना मामला दूसरी तरह करें। आप देखिए कि ऐसे लोग गलत काम करके भी ये सोच रहे हैं कि सब ठीक है, इनका गमरा क्या है, सब ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है,